cocaína.
Το χουβά έκανα.
Βέει, κουσ' το καϊένα.
Κουτζού τα τσαό.
Πείτε κουκούς να.
Κουτζ καϊένα. Κουτζ τε άκο.
Κουτζ γάλ καρό να τζί.
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़। आज जैसा कि आप काफ़ी देर से हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में सुन रहे हैं और आपको ख़ुद भी मालूम होगा कि इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है। हमारा ये प्रोग्राम, इसमें हम आपको आर्ट के मुख्तलिफ़ शोबों से मुतालिक शख्सियात से मिलवाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इस बारे में बात करें कि पाकिस्तानी सिनेमा और पाकिस्तान टेलीविज़न पर انسانی حقوق کے موضوعات کس طرح سامنے آئے لوگوں کے، اور کیا یہ جو تمام سنجیدہ موضوعات ہیں جو ہمیں عام طور سے دستاویزی جو فلمیں ہیں ان میں زیادہ نظر آتے ہیں، ڈاکیومنٹریز میں، جیسے کہ شرمین عبید کا نام کئی بار سامنے آیا ہے سلسلے میں، اور بھی کئی پاکستانی فلم ساز ہیں جو ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں، لیکن کیا کمرشل سینما میں اور پاکستان میں جو مختلف ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہیں وہ اپنے ڈراموں میں ان موضوعات کو اسی طرح پیش کر سکتے ہیں، یعنی ان کی بالکل جس میں مسخ نہ ہو جو اصل چیز پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے آپ کے سب جانے پہچانے اور بہت ہی محبوب، میں کہوں گی، ڈائریکٹر اور رائٹرز ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نور صاحب۔ تو سید نور صاحب، بہت شکریہ آنے کا۔ میں یہ چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیے، آپ بہت ہی کامیاب ڈائریکٹر ہیں اور ایسا نام ہے کہ مجھے زیادہ تعارف کروانے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے فلمیں بنائی مختلف موضوعات پر جو بہت ہی کامیاب ہوئی ہیں، اوارڈز لیے اور چلتی رہیں سینما گھروں میں مدتوں تک، لیکن ایک آپ کی سنجیدہ سی فلم ہے جس کا نام ہے مہندی والے ہاتھ، جو ایک بڑے ہی اہم موضوع پر ہے، یعنی اس موضوع پر کہ جائیداد اور زمین کی خاطر جب شادیاں کر دی جاتی ہیں عورتوں کی قرآن سے، اور جو کوئی بھی مطلب مذہبی طور پہ یہ کہیں بھی ایک قابل قبول چیز نہیں ہے، لیکن روایتی طور پہ اور ایک قبائلی معاشرے میں، جاگیردانہ معاشرے میں بار بار ہمیں نظر آتا ہے۔
اے سب لے اپا جنہ نے ایک مسوم کڑی نو قرآن نال ویا کے اودے حصے دی زمین تے قبضہ کرنا چاہیا، قرآن دنیا دے زندگی گزارن دے اصول دسن آیا سی، زندگی نو قید کرن دے۔
جب آپ نے ایسی ایک فلم بنائی تو کیا یہ کمرشل سینما میں کامیاب ہوئی اس سطح پر؟
جی، یقیناً کامیاب ہوئی تھی، اور اس کا وجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ فلم جو ہے انٹرٹینمنٹ میڈیم ہے، لارج اینڈ لائف ہے۔ میں نے اس میں اس موضوع کو، اس کرول کسٹم کو، میں نے جو ساختہ ہے مٹیروں کا بنایا ہوا ہے جو بڑے لوگ ہیں ان کا، تو اس کو میں نے بنیادی تھاٹ ضرور رکھا، لیکن اس کی جو کہانی بنی وہ بہت ہی کمرشل اور بہت ہی میوزیکل اور رومانٹک، اٹ واز یو نو پراپر لو اسٹوری۔ جو
ٹھیک کیتا ہے متو، اودی عمر سفید کفن پا کے جیوندی نہیں، رنگ برنگے بہت نہ بول چاچا، نہ بول تو پون، نہ بول رجو سگی تیرے نال کتھے گئی سی،
رائے اسے کوئی گل نہیں ہوئے گی، اڑیے اندر چل، جو تو سگی نو لے کے کتھے گئی سی،
بولتی کیوں نہیں، کتھے گئی سی؟
میں نہیں لے کے گئی سا بڑا سائی، سگی مینو لے کے گئی سی،
کتھے گئی سی سگی؟
جی کھلا وچ،
کسے نے ویکھیا تے نہیں سی اونوں؟
نہیں جی، بس اوتے شیخو، اوتے شیخو کھلا وچ۔
بہت کامیاب ہوئی ہے، لوگوں نے اس کو سراہا دی،
موضوع کے فلم میں کسی طرح اٹینڈ نہیں کیا گیا. تو میں یہاں آپ کو ایک بات کہتے سنوں کہ آپ تعریف کریں کہ شرمین عبید صحرا کی
جی
ڈاکومنٹری ڈاکومنٹری میں چل جاتا ہے. اور ڈاکومنٹری سے پہلے آج سے 12 سال پہلے میں نے ایک فلم بنائی تھی جس کا نام تھا دوپٹہ جل رہا ہے, اور وہ اسی موضوع پہ تھے, لڑکی کو جلانے کے موضوع پہ. اور وہی پراپر فلم تھی, وہ ندیم صاحب نے اس میں مین رول کیا تھا, اور اس کی بہن ہے جو ریشم اس کو چلا دیا جاتا ہے. اور تو یہ تو شرمین وغیرہ جو لوگ ہیں یہ ایک پہلو دکھاتے ہیں, کرول پہلو جو پاکستان کا ہے, اور اس سے یہ شہرت بھی حاصل کرتے ہیں بیرون ملک. تو پاکستان میں تو بہت تنقید ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے, کیونکہ آپ ایک پہلو کو دکھا دیتے ہیں جس کا پہلو کو آپ دبا دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرل سنیما کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایسی فلمیں بننی بھی چاہیے, اور ہمت چاہیے ایسی فلم بنانے کے لیے. یہ ایک کمرشل میڈیم ہے اور یہاں پیسہ لگایا جاتا ہے اور پیسہ واپس آنا بھی ضروری ہے.
ایک بات کہنا چاہوں گی, کیونکہ ہم شرمین عبید کی فلم کی بات کر رہے تھے, تو میں نے بھی ان کی فلم دیکھی اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنے موضوع پر, کیونکہ وہ ایک ایفرٹ کے بارے میں تھی جو ان عورتوں کے چہرے کو دوبارہ ٹھیک کرنے سے متعلق تھی جو ان کی پہلی فلم تھی, تو میرا خیال ہے اس کو بڑے خوبی سے کور کیا گیا. اور
یہ جو جلایا میرے ہسبینڈ نے جلایا, ٹھیک ہے, تو میں سو رہی تھی تو امی کے گھر میں آیا اس طرح, تو اس نے مجھے جلا دیا. خود ہی وہ انسان ایسا تھا کہ وہ نہیں رکھنا چاہتا مجھے.
میں اس وقت 13 سال کی تھی جب میرے ساتھ اٹیک ہوا ہے. اس سے پہلے جو میرے اسکول ٹیچر اور اس کے فرینڈ نے میرا رستہ روکا ہے, تو میں نے ساتھ جانے سے انکار کیا, تو اس وجہ سے انہوں نے میرے اوپر تیزاب گرا دیا.
کس نے تیزاب ڈالا؟
تیزاب ڈالا ہے.
Pakistan produces you know, empowered women who have full-time jobs, and it can produce women like Ruksana and Zakia, who are in my film, who are completely isolated and victims. So it's a story that needed to be told. Dr. Mohammad Jawad travels to Pakistan from the UK several times a year and operates on these women. The film starts off with him coming to Pakistan to operate on Zakia, who wanted divorce from her husband. Could not get the divorce because her husband believed that it was a matter of honor.
Mujhe bahut shauk tha tasveerein banwane ka. Jab ummi ne kapde leke deti thi na ya bhai ne leke dete the na, to maine kapde pehenne aur tasveer banwa leni. Mujhe bahut dukh hota hai. بس یہی دیکھتی ہوں کہ پہلے میں کیسی تھی کہ اب میں کیسی ہوں, کہ مجھے ہر بندے سے چہرہ اپنا چھپانا پڑتا ہے. پہلے جیسا تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کے کام تو اللہ کے ہیں, اللہ جیسا تو بندہ نہیں بنا سکتا, لیکن بندوں کی بھی ایک کوشش ہے, اور انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہی ہوگا.
آپ نے ضرور دیکھی ہوگی حیدر, آپ نے فلم دیکھی ہوگی نا, انڈیا نے میں جو بنی ہے کشمیر کے موضوع پر. اچھا, اس میں مجھے بڑی اچھی یہ بات لگی اور کہ اس میں آدھا حصہ جو ہے اس فلم کا وہ تو بالکل ایک ڈاکومنٹری کی طرح سے ہے, کشمیر میں جو انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہوئیں. تو بشارت پیر صاحب جو کہ بہت ہی اہم ایک رائٹر ہیں, نیو یارک ٹائمز کے سے بھی متعلق ہیں اور فلموں کی کہانیاں لکھتے ہیں, ناول انہوں نے لکھی ہے, تو وہ ہمارے اس پروگرام میں نہیں آ سکے, ورنہ ہم ایک ایسی فلم پہ بھی بات کر سکتے تھے جو تقریباً ڈاکومنٹری کے قریب ہے. لیکن میں نے آپ کی فلم کا ایک کلپ, میں نے کیا گل رخ نے بڑا ڈھونڈ ڈھانڈ کے آپ کی فلم کے کچھ کلپس نکالے ہیں, انہیں بہت پسند آئی آپ کی مہندی والے ہاتھ, تو ہم وہ کلپ سنتے ہیں, پھر آپ سے اور باتیں ہوتی ہیں.
اوے کون ہو تسی, اوے او منہ چک کے ادھر ہی آ گئے ہو. اوے کھلوتے رہو اے نا پیراں تے کہ جکیے تانوں اوتھے آ کے ساجے تے ماجے صاحب کو خبر ملی ہے کہ تارے ڈیرے تے حاکم دا پتر شیخو کہ اوہدے نال کڑی ہے.
اور کڑی دا نام لیندے ہاں تے اوہدے نال رشتہ دسدے ہاں, تانوں موت پیندی ہے وڈیرے ہو. اوئے اسی دسنے ہاں کڑی دا نام سکی ہے تے ہن او دھی ہے ساڈی, تے شیخو ہن ساڈا جوائی ہے.
مہندی والے ہاتھ گوا لے, کیا جا تیری نو تیری عزت तेरी ती है, इन्हें साले वडेरिया की नहीं। हुन भावे मार दे भावे तार दे।
एक टुकड़ा था आपकी फिल्म से, और हमारे एक और मेहमान हमारे साथ हैं, जाहिर है आप तो उनसे बखूबी वाकिफ हैं, अल्ताफ हुसैन साहब।
तुसी कैसे बाप हो, बेटी नू रोक टोक दा सिलसिला ही खत्म कर देता है। ऐदे एने लादा वेख्या करो, एने ऐस करो जाना भी है, पता नहीं कैसा ससुराल मिले।
ससुराल मैं अपनी बेटी लिए अपनी मर्जी दा लबांगा। मेरी रानी बैठी राज करने पैदा हुई है, ये राज करेगी राज।
अल्ताफ साहब सलाम अलैकुम।
मुझे
पता है कि आपका बहुत गला खराब है, लेकिन आपका ऐसा महबूब मौजू था ये कि आप से...
मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, मैं पूरा जोर लगा के आपसे बात करूं, उसमें मेरे बुखार भी बहुत ज्यादा है।
सैयद नूर साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, आप सैयद नूर साहब से चाहें तो आप लोग, सैयद नूर साहब भी हमारे साथ हैं और आप उनसे भी बात कर सकते हैं, सैयद नूर साहब से आप लोग आपस में जब भी बात करना चाहें।
आवाज है दोस्त, इनामी मुकाबला, मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बैठे बहुत डर लगता है, फिर बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
फोन से रब्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं, urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है, मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है, मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं,
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त, इनामी मुकाबला, मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
तो हम आपको कम बुलवाने की कोशिश करेंगे कम से कम, और सैयद नूर साहब और कहेंगे कि ज्यादा बोलें तो
जी।
तो सैयद नूर साहब, आपने सुना एक झलक अपनी मेहंदी वाले हाथ की, और थोड़ा सा अब आप मुझे ये बताइए, अभी बात आपने काफ़ी तफसील से की, लेकिन आपने जिक्र किया जलाने का जिक्र था, तो आपका क्या ख्याल है कि ये पैगाम जब फिल्मों में दिया जाता है, तो क्योंकि जैसे कि आपने ये कहा कि एंटरटेनमेंट भी होता है, म्यूजिक भी, डांस भी, सब कुछ, तो क्या वो जिस तरह एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए तो एक थोड़ा सा बराह रास्त पहुंचता है ना, लेकिन क्या वो पैगाम जो असल रूह होती है उसकी वो लोगों तक पहुँच पाती है या बीच में खो जाती है कहीं मौजू जो होता है।
देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ आप आसान सराय में पहुँचाते हैं मैसेज, वो आप बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ डेवलप करके नहीं पहुँचा सकते। डॉक्यूमेंट्री देखने वाले बहुत कम लोग हैं, मेरा ख्याल है कि 1% भी नहीं होंगे।
दुरुस्त,
1% भी नहीं होंगे जो देखें। फिल्में देखने वाले 3% पे चले जाते हैं, 3% 4% पूरी आबादी के। तो जो तफरी के साथ साथ आप जब संजीदगी की तरफ आते हैं, तो डेफिनेटली वो मुकाम जो है फिल्म का हो या ड्रामे का हो, वो मुकाम बहुत असर करता है और इंसान उसको बहुत संजीदगी से लेता है। क्योंकि समहाओ आप ये देखिए कि बहुत कम लोग देखते हैं और उसका इम्पैक्ट जो है, मैंने तक तो देखा है कि कोई रिव्यू आ गया या उस पर कुछ लिखा गया, लेकिन उसकी पसंदीदगी का तनासब इतना नहीं होता, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री होती है, हकीकत करीब होती है, और अब तो डॉक्यूमेंट्री ऐसी बननी है جس کو ڈراماٹائز کرتے ہیں اور جھوٹ موٹ کے پلندے بنا کے ایسے انٹرویوز کرتے کر دیتے ہیں. جو پراپر ڈاکیومنٹری ہوتی ہیں وہ بڑی افیکٹو ہوتی ہیں, اور بات پھر وہیں آ جاتی ہے جو کہ دیکھنے والے جو ہے نا 1% بھی نہیں ہوتے.
جی ہاں, درست. تو میں یہاں آپ سے پوچھوں گی الطاف حسین صاحب, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ڈاکومنٹری کے موضوعات فلم میں کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ہم نے آپ نے کچھ فلموں کا حوالہ دیا تھا, جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی فلم مہندی والے حد جو ہے سید نور صاحب کی, وہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور وہ آج تک رائج ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں. تو آپ نے بھی کئی اپنی فلموں کے نام بتائے, جیسے کہ دھی رانی اور بیٹی راج کرے گی, اور جی تو ہم نے وہ
مر جینے نہیں دیتے.
جی
تو میں نے دوسری میرے انڈی فلم کافی بنائی ہے. بات یہ ہے جو کہ یہ جو ڈاکومنٹری ہے نا, یہ ایک مخصوص لوگوں کے لیے ہے, یہ ایسی کمرشل کام نہیں ہے. کوئی فلم کا میڈیا میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا یہ کمرشل آرٹ ہے, اور اس کو یہ مد نظر کر رہی ہے. ہم نے اپنے آڈینس کو ایسی باتیں جو ہم نے ہم لوگوں نے ان تک پہنچانی ہے, وہ اس طریقے سے پہنچائے کہ وہ اسے قبول بھی کرے اور مان بھی لے. فلم بنانی چاہیے, میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری عوام جو ہے جتنی ڈپریشن میں اس وقت ہے شاید کبھی نہ ہو. مجھے دیکھیے کہ اپنا دہشت گردی اور دیکھیے خون خراب ہے, اور دیکھیے جو میں کرپشن اور ملک میں افسر ابھی ایک بے چکینی کا دور ہے, اور مہنگائی کی اس حد تک ہو چکی ہے کہ کوئی بندہ افورڈ نہیں کرتا. اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات جو ہم نے ایک کی ہے کہ ہم نے 75% آڈینس اپنی جو ہے وہ ہم نے فلم سے دور کر دی ہے. اور وہ آڈینس کون سی ہے, وہ ہے یہ رکشے والا ہے, جو ٹیکسی والا ہے, جو ماسز جو ہے, جو ریڈی والا ہے, یہ اپنا ٹانگے والا ہے, کہ جتنا یہ ماسز ہے جو اپنا یہ لوگ ہیں جو کہ جن میں جا کے دیکھتے تھے انہیں ہم نے دور کر دیا, کیونکہ ان کی اپنا اپروچ سے اپنا مطلب دور نکل گئی. شروع کوئی بندہ فون نہیں کہتا کہ وہ اپنا 500 کی ٹکٹ لے پسند ہے اگر ہمیں سروائیو کرنا ہے.
اچھا تو اس کی کیا وجہ ہوئی ان لوگوں کے دور کرنے کی, جو ٹکٹ زیادہ ہو گیا اس کی وجہ سے؟
یہ بات یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک کلاس کے لیے فلم بنانی شروع کر دی نا.
جی
ہم نے وہ پہلے فلم بنتی تھی اس میں اپنا ہر طرح کا خیال رکھتے تھے, اس میں ایلیٹ کلاس کی بھی ہم نے اپنا ان کی چوائس جو ہے اس میں ہوتی تھی, اس میں مڈل کلاس کی بھی ہوتی تھی, اس میں ماسٹر کی بھی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد وہاں وہ جو ہم نے درجے رکھے ہوئے تھے ٹکٹوں کے, وہ بڑے خوبصورت رہے جو مطلب جو جیسے افورڈ کرے وہ آگے ٹکٹ لے جاؤ اپنا فلم دیکھے. اب تو ہم نے یہ ماسٹر جو ہے وہ آ ہی نہیں سکتے سرنے میں, 500-1000
روپے کون ٹکٹ خرچ کرے گا. ایک جھلک اب ہم ایک کلپ آپ کی فلم سے پہلے سنوائیں الطاف حسین صاحب کی, اور اس کے بعد ہم چلیں گے دوبارہ گفتگو کی طرف.
پر میری بیٹی تے اثر تے پابندی لگے گی. جا بیٹا جی, تسی جا کے کپڑے تبدیل کرو تے گرم کمبل اتے لے لو. زینت تو فٹافٹ میری بیٹی نو دودھ گرم کر کے لا کے دے.
او پاپا.
او بیٹا
تھینک یو. मामा।
तो ये आपकी फिल्म रानी बेटी राज करेगी से था, और अब हम दोबारा चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मैं बता दूं कि फेसबुक पर भी डाला था, आप सब दोनों के लिए, तीनों के लिए बहुत से सैकड़ों मोहब्बत भरे पैगामात हैं और आपको खुश आमदेद कहा है। लेकिन एक हमारे हैं कॉलर शफीक वानी, उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो तो मग़रिब में ज़्यादा है, मशरक में कम। तो जवाब मैं दे दूँ इसका शफीक कि हम ये बात नहीं कह रहे कि कहाँ ज़्यादा हैं या कम। यहाँ पे बेशुमार फिल्में बनती हैं, इवन जो कमर्शियल फिल्में बनती हैं, क्योंकि बहुत ही तरक्की याफ्ता इंडस्ट्री है, और हम बिल्कुल मुकाबला इसका पाकिस्तान से करना भी नहीं चाह रहे। तो यहाँ तो बहुत कुछ, हर इतनी तादाद में फिल्में बनती हैं कि कोई मौजूदात ऐसे नहीं है जो छूट जाएं। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ फिल्म इंडस्ट्री कशमकश और मुश्किल में है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये बात हम करेंगे। अच्छा, मोहम्मद अजीम ने ये कहा है, आप लोगों से पूछा था कि मैं आप लोगों से पूछूं कि बर्मा के मुसलमानों के बारे में। तो मैं बता दूं, खुद ही बता दूं कि ज़ाहिर है ये बर्मा के मुसलमानों का मौजू पाकिस्तानी सिनेमा में ज़ाहिर अब तक नहीं आया। तो ये सवाल किसी ऐसे प्रोग्राम में हम आपका शामिल करेंगे जो करंट अफेयर से मुतालिक हो। अच्छा, अब आप बताइए मुझे सैयद नूर साहब, अल्ताफ़ साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि हमने 75% लोगों को दूर कर दिया सिनेमा से, इत्तेफाक करते हैं आप इससे?
हाँ, ये बात तो है, लेकिन सिनेमा में तरक्की भी तो करनी है। आप उन्हीं के लिए 75% लोगों के लिए अगर हम फिल्में बनाते रहेंगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ कब बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे
जी?
तो ये कोई शक नहीं है कि वो मार्किंग जो है जिसको देखता था वो नहीं आ रहा सिनेमा में, लेकिन जो अब आ रहे हैं जो उस वक्त नहीं आते थे जब 75% सिनेमा लोग सिनेमा आते
जी।
तो अब ये ऑडियंस तब नहीं आती थी जो अपर क्लास है, और अब आगे आ रही है। वो एनवायरमेंट, वो सिनेमा का जो माहौल है वो अब पाकिस्तान में भी राइज होना चाहिए, सारी दुनिया में हुआ। अगर हम उसी वकील के फकीर रहेंगे, हम वही करते रहेंगे जो हम 10 साल या 15 साल या 30 साल या 40 साल पहले करते रहे, तो फिर हमारा सिनेमा कहाँ खड़ा होगा? तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये तरक्की जरूरी थी। और अगर देखें, मेरी फिल्म चूड़ियों की मैं मिसाल देता हूँ आपको, 35 रुपए की टिकट के साथ मैं 40 करोड़ का बिजनेस किया था सालों में।
साढ़े दिल दा परो
ठीक है। आज फिल्म इतने कम सिनेमा में 40 करोड़ रुपया 3 वीक में कर रही है, वो सिनेमा और ये सिनेमा में ये है। और मेरा ख्याल है हम कोशिश कर रहे हैं अपने एम्पेज पाकिस्तान के छोटे शहरों में सिनेमा बने जिनकी टिकट सस्ती हो, जो मासिक भी देख सके और वो भी देख सकते। लेकिन क्या ये वक्त की जरूरत थी कि हम इंटरनेशनली हम जो है आगे बढ़ें और ऐसे सिनेमा यहाँ मौजूद हों जहाँ आज नई दौर के आगे देखें ऑडियंस बदल गई है। अब वो ऑडियंस जो हमारी फिल्म में देखा करती थी अब वो नहीं है। अब जो है वो नए बच्चे हैं जो 16 साल के 20 साल के 22 साल के हैं, इन्होंने हमारी फिल्म जरूर नहीं देखी। आज ये जो फिल्म देख रहे हैं ये जो है ये अंग्रेजी फिल्मों से बहुत ज्यादा मुतासर है, ये लोग इंडियन फिल्म से बहुत मुतासर है। हमें इंडियन फिल्म को अंग्रेजी फिल्म को मार देने के लिए या उनके मुकाबले से अपनी फिल्म चलाने के लिए वो मजा रखना पड़ेगा ना।
जी हाँ,
मदद नहीं हो सकता।
बिल्कुल दुरुस्त। तो
लिहाजा ये बहुत
जी। अच्छा अच्छा, तो आप वैसे कहाँ पर हैं इस वक्त सैयद नूर साहब? आप घर में हैं, घर से बाहर हैं इस वक्त?
मैं गाड़ी में आते आते आपसे इंटरव्यू दिया, मैं घर में।
अच्छा, क्योंकि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब थोड़ी सी हमें अच्छी आवाज़ आपकी मिलेगी। काफ़ी शोर पीछे था तो मैं यही सोच रही थी कि शायद आप कहीं बाहर हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने फ़ोन उठाया क्योंकि हम आपको शुरू से लेना चाह रहे थे प्रोग्राम में। तो हम दो कॉलर्स को ले रहे हैं। सनाउल्ला मरी हैं कोहलू से, बलूचिस्तान से। जी सनाउल्ला मरी,
तो मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
जी आ रही है बिल्कुल।
अच्छा मैडम, बात ये है कि आज मकसद ये है कि आपने ह्यूमन राइट्स के दिन के मुनासिब से आपने सैयद नूर साहब को दावत दी है।
जी।
तो मेरा इनसे एक सवाल है।
जी।
वो सवाल ये है कि आप औरतों के हकूक पर फिल्में तो बनाते रहते हैं और भी शोभा जात के उस पर बनाते हैं, लेकिन क्या आपने डिसेबल बच्चों, डिसेबल औरतों और उनके हकूक के मुतालिक भी आपने फिल्में बनाई हैं कि नहीं? ये मुझे जो है ना ज़रा जो बनाई है तो ठीक, मतलब बता दें इन फ्यूचर क्या इरादा है वो भी हमें बता दें, बड़ी मेहरबानी।
जी आपको आवाज़ आई इनकी, सैयद नूर साहब इनका जो सवाल है?
जी मुझे आई अर्थात मैं इनको ये जवाब देता हूँ।
जी
इस मौजूद मैंने अभी तक तो कोई फिल्म बनाई नहीं। ये जो मौजूद है ना ये दुनिया में मेन स्ट्रीम सिनेमा पे नहीं जाते, ये पैरेलल सिनेमा पे हमेशा जाते हैं।
जी
पैरेलल सिनेमा जो है वो बहुत कम बजट में बनाया जाता है और इसमें लोग जो है वो कम पैसे पे काम करते हैं और वो उसका जो बजट होता है वो छोटा होता है और कहीं ना कहीं से ये प्राइवेट सेक्टर से लोग आते हैं, लेके आते हैं और वो ऐसे मौजू पे कभी फिल्में बनाएंगे जिसके चलने के इम्कान कम हों और कोई सीरियस सिनेमा देखने के लिए तैयार नहीं है। ऑडियंस में से लोग वहाँ इंजॉय करने आते हैं, सिनेमा एक ऐसा नहीं है। लिहाजा मैं यहाँ ये कहूँगा कि बनानी चाहिए फिल्म ऐसी, लेकिन फिलहाल हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, अभी तो हम बहुत पीछे हैं।
मैं हमारे मेहमान जो इस वक्त हमें मिल गए हैं बहुत देर से, बल्कि मैं कल से कोशिश कर रही थी, डॉक्टर मशहूद कादरी हमारे साथ हैं इस वक्त एरिजोना से। डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है आपको?
जी
वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर साहब का तारुफ करवा दूं, अभी आप लोगों ने बात की कि डिसएबल, ये सवाल ये था कि जो माजूरी है उसके ऊपर कोई फिल्म बनी है, यानी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब इस वक्त के इंसानी हकूक के दिन के मौके पर कि हमारी फिल्म में और टेलीविज़न में इंसानी हकूक की किस हद तक हम उस पर बात करते हैं। तो मुझे फौरन आपकी फिल्म सावन याद आई जिसमें आपने बलूचिस्तान के एक बच्चे के पर बनाई है जिसको पूरी सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया, हत्ता कि उसके बाप ने भी उसकी माजूरी की वजह से।
माँ अगर किसी को पाँव पाँव शहर जाना तो वो कैसे जाएगा?
वो दो पहाड़ नजर आ रहे हैं ना, बस उन पहाड़ों के पीछे सड़क जाती है, वहां से गाड़ी तुमको लेकर शहर जाए।
ओ, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों इसका कोपड़ी में उल्टा बात घुसाता है? ये खुद तो दो कदम चल नहीं सकता।
We'll be right back. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार।
तो एक सवाल यही था इस बारे में कि क्या इस पे काम हुआ, और इत्तेफाक से बलूचिस्तान से ही था, लेकिन पहले मैं एक अपने कॉलर कॉल लूँ, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। जी शौकत अली अंजुम साहब।
हेलो
जी। जी अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब।
वालेकुम मैडम, सबसे पहले तो आलमी तंजीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ आलमी कुक के मौके पर। तो दूसरी बात ये है कि आपके वहाँ तक मुझे आ रही दोबारा, फिर क्या ये क्या बात है?
मुझे नहीं मालूम आपको मेरी आवाज़ क्यों आ रही, आपके आपको पसंद आ गई है, ज्यादा गूंजती रहती है आपके कानों में, मैं यही कह सकती हूँ। नहीं नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, आप जल्दी सवाल पूछिए, अपना आवाज़ को आने दीजिए।
सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मतलब जैसे आम इंसान के लिए काम कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, क्या स्पेशल अफराद की भलाई के लिए भी काम करते हैं? जैसे मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान एसोसिएशन बहावल नगर का प्रेसिडेंट हूँ और बाकी सुबाई सेक्रेटरी हूँ, तो जनरल बच्चों को पढ़ाता हूँ, आप भी बताएं उनको कि ये अगर लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर चलना ये स्पेशल लोग चाहते हैं।
ठीक है, तो शौकत साहब मुझे
मदद फरमाए तो बड़ी मेहरबानी होगी।
ठीक है शौकत साहब, बहुत शुक्रिया। ये शौकत साहब जो हैं ये भी माजूर अफराद के लिए काम करते हैं, खुद ये भी नाबीना हैं और टीचर हैं और बहुत कामयाब टीचर हैं ये, तो ये बहुत हिम्मत वाले आदमी हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी मशहूर, आप बताइए कि आपकी इस फिल्म की रूह क्या है, मतलब किस चीज को लेके आप चले हैं, आप क्या आखिर में पैगाम क्या देना चाहते हैं इस फिल्म के हवाले से?
के अंदर दो बहुत जो पैगाम है, एक तो ये कि जो हमारे यहाँ बच्चे जिस्मानी तौर पर मजदूर होते हैं उनको हमारा माशरा जो है वो ज़हनी तौर पर मफलूज बना देता है। वो बच्चे जो जिस्मानी तौर पर किसी तरह कमज़ोर होते हैं
जी।
वो आम तौर पर उनके अंदर कोई बहुत बड़ा टैलेंट, कोई बहुत बड़ा उनके अंदर अल्लाह ताला को कोई सिफ्त देता है जो जिसकी वजह से वो बहुत कुछ कर सकते हैं मुआशरे में। तो ये इसका एक बहुत बड़ा वो था, और दूसरा ये था कि जो हमारे मुआशरे के अंदर वो है ना कि बहुत जल्द उन चीज़ों से मुतासर हो जाना जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारे एक ये बहुत बड़ा मैसेज था इसका
जी। अच्छा, तो हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं सैयद नूर साहब हैं और अल्ताफ हुसैन साहब, दोनों डायरेक्टर्स हैं और आप इनसे वाकिफ ही होंगे। तो अल्ताफ साहब, अब आपसे मैं ये सवाल पूछूंगी कि जैसे कि इस वक्त माजूरी पे बात की, तो कोई आपकी फिल्म है जिसमें आपने इस मसले को उजागर किया हो अपनी किसी फिल्म में? जी
देखिए, मैं कोई ऐसी फिल्म नहीं है मेरे जहन में इस तारे पे जिसने उजागर किया है, मगर हमने बड़े अच्छे अच्छे मौजूद रहने अपने फिल्में दिए हैं, लेकिन मैंने आपको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। ये टेररिस्ट हमने के लिए फिल्में होती हैं जो होती है, ये हमने ये मासिक के लिए ये चीज नहीं है, क्योंकि एक जब एक तबका है टेररिस्ट हमारे जो देखते हैं जो शौक से देखते हैं इस चीज को, हमें उजागर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम कोशिश करते हैं अपनी फिल्मों में कोई ना कोई जो हमारा हॉट सब्जेक्ट हो या कोई बात हो मुआशरे में, वो हम अपनी फिल्म में उस तरीके से पेश करें कि लोगों को अपना जो समझ आ जाए। ये नहीं है कि हम अगर आप किसी डायरेक्ट किसी बंदे को, मैं माफी के साथ, अगर किसी को आप कहेंगे यार तुम अंधे हो, वही हम बुरे बुरा मनाएगा। जब आप उसे ये कहेंगे ये आँख आपने कैसी खराब हुई, किस तरह हुई, क्यों हुई, तो वो एक ये है अंदाज है फिल्म का, ये अंदाज है कि फिल्म में हम जो बात करते हैं वो हम तरीके से करते हैं हम उसे, ताकि लोग जो है ना उसे कबूल भी कर लें। तो ये हमने पैरिट हमें ये जो अपने डॉक्यूमेंट लिखते हैं ये ठेक ठेक होती है, और कई लोगों जो है ना इसमें फील भी होती है और कई लोग अपने कामयाब भी होते हैं। और मैं समझता हूँ कि फिल्म जो है इससे भी अपने टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे निकल गई है, हमें उसके साथ चलना चाहिए, हम उसके साथ चलना चाहते हैं और चलेंगे। देखिए शरीर मूसा भी अच्छा काम कर रहे हैं, फिल्में बनाई मेरे साथ ही उन्होंने स्क्रिप्ट अपना मेरी कहानी में लिखी फिल्म थी, एक मेरी फिल्म थी बारिश जो सुपर डुपर ही फिल्म थी, और मेरा शरीर साहब ने उसने अपना अपने मुल्क की नेशनल का अपने तमाम मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान बना क्यों है और किसी ने मतलब ये उसका मौजूद था उस फिल्म का बारिश का।
بہت شکریہ الطاف صاحب جی جی میں اگلا سوال پھر ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف سید نور صاحب بھی واپس آ گئے ہیں سید نور صاحب آپ کے عدم موجودگی میں جب آپ تھوڑی دیر کے لیے سلسلہ منقطع ہوا تھا ڈاکٹر مشروط قادری ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے ایک فلم بنائی ہے ساون کے نام سے اور یہاں یہ ایریزونا میں ہے مقیم اور ڈاکٹر صاحب آپ کی فلم ریلیز ہو گئی یا ابھی نہیں ہوئی
نہیں نہیں ابھی ہم نے ریلیز نہیں کری کیونکہ اس میں کچھ تھوڑے سے خد و خال آ گئے تھے تو وہ اس کو تھوڑا ٹھیک کر کے اب ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہر چیز تیار ہے
جی
تو اب چونکہ وہاں پہ تھوڑے سے حالات بدل گئے ہیں جو ہندوستان کی فلم انڈسٹری گئی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہیجان کا شکار ہے انڈسٹری تو اس کو ہم اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارا ٹارگیٹ جنوری کا اینڈ یا فیبرری کا مڈ ہے اس کو لانے کا
اچھا ڈاکومنٹری اجاگر کرتی ہے لیکن وہ طریقہ نہیں بتاتی تو میں سید نور صاحب آپ کو ایک فلم کی مثال دوں گی میری بہت پسندیدہ فلم ہے تارے زمین پہ جس میں ایک بیماری ہے جس کا ذکر ہے جو کبھی بھی کسی فلم میں نہیں آیا اور وہ فلم کتنی کامیاب ہوئی کمرشل سطح پر تو ظاہر ہے کہ وہ اس ملک کی ہے جو بہت ہی جہاں پہ انڈسٹری ہے فلم جو ہے جو ابھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا لیکن پاکستان میں ہم دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزوں فلمیں اچھی جو بنی جنہیں پاکستان آئی ایس پی آر نے اسپانسر کیا جیسے بول تھی یا خدا کے لیے اس طرح کی کئی فلمیں تھیں تو کیا آپ لوگوں جیسے جو فلم ساز ہیں ان کے لیے اس طرح کی فنڈنگ ہو سکتی ہے کہ آپ موضوعات پہ فلمیں بنائیں بغیر اس کی فکر کیے کہ اس پہ سرمایہ کون لگائے گا سید نور صاحب
میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں بہت سارے ہیں آپ کے سوال میں بہت سارے جواب ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا فنڈنگ کے حوالے سے پیسہ لگانے کے حوالے سے تو میں آپ کو بتا چلوں اس کی سب سے بڑی مثال ایران ہے ایران جب ٹرانزیشن آیا خمینی صاحب
آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ جی گلرخ آپ ان کو ملائیے گا اور یہی بات میں پھر آپ سے پوچھوں گی مشروط آپ بتائیے اس کا جواب آپ کیا سمجھتے ہیں
اس میں تین چیزیں بہت ضروری ہیں دیکھیں جو معاشرے کے اندر جو ہمارے خرابیاں ہیں یا جو خامیاں ہیں جو کمزوریاں ہیں اس میں جو ایک بہت بڑی خامی ہے وہ ہے کہ ہمارے یہاں سے ایک دوسرے کی عزت ختم ہو گئی ہے ہر طرح سے چاہے وہ اس کا تعلق مذہب سے ہو چاہے اس کا تعلق لسانیت سے ہو کیونکہ نظام جو ہے وہ تھوڑا درم برم ہو چکا ہے تو اس کی وجہ سے جب انسان کو سڑک پہ چلتے میں گاڑی میں جاتے میں اس کو اس کے حقوق نہیں ملتے اس کو نظر آتا ہے کہ لوگ قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اس کی ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیج سے کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی روک تھام نہیں ہو رہا تو وہ سب جو ہیں وہاں پر خود اپنے حالات کے ذمہ دار تو ہوتے ہی ہیں مگر وہ حالات کو سدھارنے کے لیے اپنے انداز میں کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں تک تعلق آپ نے تیزاب والی بات کی کہی اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ جہالت کا ہے
جی
اور اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آپ دوبارہ بات آ جاتی عزت کی جب آپ کسی کمزور کی عزت نہیں کریں گے تو سب عورت کمزور ہے ان کی نظر میں یہ اس کا جواب ہے آج تک کسی عورت نے مرد کے اوپر تیزاب نہیں پھینکا
درست
تو یہ ایک چیز ہے اب فلم کے اندر جو ہے آپ میسج کیسے ڈیلیور کرتے ہیں جس سے آپ نے ابھی فلم کا نام دیا دیکھیں ہندوستان کی جب فلم بنتی ہے نا تو ان کی آپ جیسے آپ نے ہی الفاظ اپنی بات کے اندر بہت خوبصورت بات کر دی تھی وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے ان کے پاس
جی
اب اگر ہم سچ کو سچ نہیں بولیں گے تو ہم خود جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے پاس انسٹیٹیوشن نہیں ہے
درست
ہم اگر ابھی فلم ساون کو لے کے جاتے ہیں اور اگر ہم این ڈی فلم جسے کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ فلم والے ہیں ہمیں جن مسائل کا اس وقت ہم شکار ہیں اگر میں آپ سے شیئر کروں تو آپ ہنسیں گی تو یہ کہ ظاہر ہے کہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے کوئی کالج نہیں ہے کوئی اسکول نہیں ہے اس کی اور بھی وجوہات ہیں کہ وہ ادارے جن کو کہ اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے وہ ادارے دخل اندازی کرتے ہیں
درست
تو ہم میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا کہ دوسرے ادارے جن کے کہ اور بہت سارے مسائل ہیں وہ ان اداروں کے اندر مداخلت کریں
میرا خیال ہے یہ بات سید نور صاحب کہہ رہے تھے جب ان کا فون کٹا تو نور صاحب کیونکہ واپس آ گئے تو نور صاحب وہیں سے جہاں آپ نے گفتگو شروع کی تھی کہ سرمایہ کی جو بات ہو رہی تھی
یہ ایک بات ہے اور اس میں سرمایہ جو ہے اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ کہتے ہیں پیسے ہیں اور آپ اس قسم کی فلم بنائیں اس کی مرضی چلتی ہے
تو اس لیے بیڑا غرق ہوا ہے فلموں کا. جب پروڈیوسر آ کے اپنی منمانی کرتا ہے اور اپنی اسکرپٹ دیتا ہے اور کریٹو جو شخص ہے, جو ڈائریکٹر ہے, جو رائٹر ہے, وہ پابند ہو جاتے ہیں, اس کے لیے وہ بات نہیں بنتی. لیکن یہ میں جو اصل بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب ایران کی مثال میں دے رہا تھا جہاں بہت کریٹو فلمس بنتی ہیں, بہت اچھی فلمس بنتی ہیں, آلموسٹ ساری پیرل کرنا کے حوالے سے ہوتی ہیں, اور اب یہ وہاں جب خمینی صاحب آئے تو انہوں نے فلم والوں کا خیال تھا کہ یہ فلم انڈسٹری کو بند کر دیں گے, اسلامی ریزولوشن آ گیا. لیکن خمینی صاحب نے اس کے برعکس ان سب فلم والوں کو بلایا, انہوں نے کہا کہ آج تک جو فلمیں بنی ہیں انہیں بھول جائیے, اور میں ایک ادارہ قائم کر رہا ہوں جو آپ کو فنڈنگ دے گا. فارابی کے نام سے میں ادارہ بنایا, اور جتنے آپ کو پیسے چاہیے آپ اس ادارے سے لیں اور آپ وہ فلمیں بنائیں جو ایران کو عزت دے. اس لیے وہاں صرف فلم لے کر اٹھے اور انہوں نے بہت ریلسٹک فلم بنائی. ان کو یہ خیال قطر نہیں تھا کہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا, فری مائنڈ کے ساتھ انہوں نے فلمیں بنائی.
بالکل,
اور وہ فلمیں کامیابی ہوئی اور ایران کا نام بھی روشن ہوا. دوسری طرف انڈیا کی آپ نے سارے زمین کی مثال دی ہے, سارے زمین کے جو فلم ہے اس میں اگر عامر خان نہ ہوتا, کوئی عام ایکٹر ہوتا, تو وہ ایک شو بھی نہیں کرتی. یہ قدم ہے, وہ سپر اسٹار تھا, اس کو دل چاہنے والے دیکھنے والے بہت لوگ تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ بچے کو کیا, بچوں کو کیا فلم بنائی ہوگی, وہ دیکھنے کے لیے گئے. لیکن جتنی عامر خان کی فلمیں گراس لیتی ہیں وہ اس کے 10% ہی نہیں تھی, اس کے باوجود عامر خان ہے, لیکن لوگوں نے خود دیکھا. تو یہ بہت ضروری ہوتی ہیں چیزیں, کہنا بہت آسان ہے لیکن کر کے لاس کر کے یہ کرنا بہت مشکل.
کہ آپ لوگوں کی تو اپنا بھی اب ایک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے پاکستانی فلم سنیما کے احیاء پر, تو کیا آپ لوگ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ سرکار جو ہے پاکستانی حکومت جو ہے وہ کسی طرح اس طرح مدد کرے فلمیں بنانے میں جیسے کہ ایران میں کی جا رہی ہے؟
دیکھیے, یہ حکومت پہلے اپنی مدد تو کر لے, ان لوگوں کو اپنی پڑی وہ فلم کا کیا سوچیں گے بیچارے. ایک ہم تو ایک یتیم فلم انڈسٹری ہیں جو جب سے پاکستان بنا ہے یتیموں کی طرح اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک ادارہ بنایا تھا انہوں نے, توڑ پھوڑ کے سارا پیسہ ویسے حضم کر دیا. تو یہ جب تک ادارے نہیں ہوں گے ایسی پیدل کرنا اور ایسی ریلیٹو کرنا نہیں بن سکتا, اس لیے کہ اگر کوئی 4 کروڑ یا 3 کروڑ روپیہ لگاتا ہے تو وہ چاہے گا کہ اس کو واپس آئے گا, یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو 2 روپئے بھی واپس نہ آئے. اب سلوٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے, سلوٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے, سلوٹ ڈیڈ بھی فلوپ ہوئی ہے. پھر
اچھا
بیڈ بھی فلوپ ہوئی ہے, بیڈ بھی.
حالانکہ اس میں
لہٰذا یہ باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ہے. یہ آپ ایسی فلمیں کیوں نہیں بناتے, ویسی کیوں نہیں فلم بناتے, جیسے کھلاڑی یہ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے, کہہ رہے ہیں اس کو ایسے شاٹ مارنا چاہیے, جب وہ وہاں جائے گا تو اس کو گیند بھی نظر نہیں آئے گا اندر جا کے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کا بالکل یعنی اور جو جائز ہے کہ حکومت کی طرف سے تو کوئی امید نہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے مشہود, بلکہ میں آپ سے شروع کروں گی کہ آپ تو امریکہ میں, اور ایک تصور یہ ہے کہ یہاں ظاہر ہے پیسہ جو ہے اس کی فراوانی بہتر ہے پاکستان کے مقابلے میں, لیکن کیا وہ امکانات ہیں اس کے لیے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ فلموں پہ پیسہ لگائیں؟ مجھے پتا ہے کہ آپ تو اپنے طور پہ کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے کرتے ہیں, لیکن کیا جو دوسرے لوگ ہیں جو بڑے بڑے یہاں پہ بزنس اونرز بھی ہیں جو جن کا تعلق پاکستان سے ہے, تو آپ کے خیال میں وہ اس انڈسٹری پہ کریں گے انویسٹ کبھی پاکستان کی؟
اس کا دیکھیں بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ جو ابھی نور بھائی نے بات کہی کے اندر میں صرف ایک ایڈیشن یہ کروں گا کہ جو آپ کی عوام ہے نا وہ چاہتی ہے کہ موویز سکسیسفل ہو, وہ چاہتی ہے. چاہے میں بھی جب لاسٹ اپنے آخری دفعہ پاکستان گیا تھا میں نے وہاں جا کے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کا رجحان کیا ہے, وہ فلمیں خراب بھی ہوتی ہیں تب بھی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ فلمیں اچھی بنیں, پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہماری اس وقت انڈسٹری ہے اس کو یہ بات فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ایک لفظ ہے آئٹم نمبر. میری ایک فلم تھی آپ کو پتا ہوگا ریاست میں, ریاست
جی.
اس کو 4 انٹرنیشنل ایوارڈ ملے
جی.
اور ماشاء اللہ سے وہ پاکستان کے کسی تھیٹر میں نہیں چلی. آخر میں ہم نے وہ TV1 والوں کو دے دی, उन्होंने उसको 14 अगस्त का एक प्ले बना के चला दिया। तो मसला क्या है कि जो जो चलाने वाले हैं, जो समझ लीजिए कि इसके अंदर जिनका असल असर रसूख है, वो खाइफ रहते हैं कि हम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। आपने अभी जिस फिल्म का नाम लिया जिसमें कि आमिर खान साहब थे, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट
जी।
ईरान की मूवीज में और पाकिस्तान की मूवीज का सबसे बड़ा फर्क यह है कि ईरान की फिल्म का, जिसका कि किसी को भी लैंग्वेज नहीं आती, वो सब टाइटल पढ़ के दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाती है एशिया के अंदर आफ्टर इंडिया।
बिल्कुल।
जब पाकिस्तान में बैन लगा, जब जनरल साहब ने जब बैन लगवाया था, जो डायरेक्टर्स के ऊपर ग्रेजुएशन की उन्होंने सनद लगाई थी, उससे ये हुआ कि हमारे राइटर जो थे वो हमेशा के लिए गायब हो गए। ईरान के अंदर उससे ज्यादा बैन लगे थे उनकी उस जमाने में उनकी जो हुकूमत थी, मगर उन्होंने अपने जो उनके अखलाकियात थे फिल्म के वो खत्म नहीं किए। उससे फायदा क्या हुआ, उनके राइटर्स जिंदा रहे, उनके वो प्रोड्यूसर्स जिंदा रहे जिनको मालूम था कि अगर हम मूवी का स्क्रिप्ट को जिंदा रखेंगे तो वो चलेगी। आप आज की पाकिस्तानी फिल्म देखें तो वो लगता है कि ड्रामे की एक्सटेंशन है, क्योंकि फिल्म की वो जो ग्रोथ थी वो तबाह हो चुकी है, वो मर चुकी है। जैसे अभी नूर साहब ने कहा, इन चीजों पे काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि छोटे 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 इंस्टीट्यूशन बने, छोटे छोटे कॉलेजेस बने। जैसे सर सैयद यूनिवर्सिटी है कराची में, वहां पर बच्चे जो है वो अच्छी तरह से, मैंने देखा जाके बहुत खुशी हुई थी, बहुत पैशनेट है, बहुत उनके अंदर टैलेंट है। आप अगर यूट्यूब पे जाइए और आप इनकी कराची वाले और लाहौर वाले बच्चों की वो देखिए जो फनी वीडियोस बना के डालते हैं, मैं तो उसका कोई बराबरी नहीं है उनकी।
बिल्कुल
टैलेंट है, सिर्फ एक स्कूल बनाना है। तीसरी चीज जो हमारे सबसे बड़ी कमजोरी है, वो फेस्टिवल नहीं होते।
कौन?
आप फेस्टिवल देख रहे हैं ईरान के अंदर, ईरान के अंदर 27 फेस्टिवल होते हैं
जी। मेरा ख्याल है कोई अल्ताफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं।
मैं सुन रहा हूँ सारी बातें
जी, जी।
बात क्या है कि जरा थोड़ा सा अंदर आप देखें कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी है और अच्छी अच्छी मौसम फिल्में बनी है। दूसरी बात ये, हमने कभी एक बुराई को हमने उभारा नहीं है, हमने उसे कंडेम किया, उसे कहा भी निकलता है, हमने अपना हर बुरी चीज को बुरा, हमने मुआशरे की उन चीजों को उठाया है कि भाई जो हमने जो क्या 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 तकलीफ है। बात ये है कि जैसे इस वक्त हमें ये जरूरत है कि आपने एक इंटरव्यू कहा कि ये हुकूमत हमारा साथ, तो हमारा साथ तो क्यों नहीं हुकूमत ने दिया, ये जितने जरूरत आप काम कर रहे हैं अपने 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 बल बोटे पे कर रहे हैं। मैं अगर कर रहा हूँ अपने शुरू किया तो मैं अपने बल बोटे, हर बंदा एक बात जो हमें हमारी बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि हमें हमारे उस्तादों के जाने के बाद हमें क्यादत अच्छी मिली है, यहाँ कोई अपना ऐसा नहीं हुआ कि जो अपना आके हुकूमत से अपनी बात मनवा सके। पहले ये होता था कि हमारे जो अपना लीडर थे वो आवाज देते जो हम यहाँ से बाई रोड इस्लामाबाद पहुंच जाते थे और अपनी बात मनवा के आते थे। बात क्या है कि हमने इस वक्त हम सिर्फ अपना 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 काम कर रहे हैं सारे, एक नहीं हो रहा है, मान नहीं रहे एक दूसरे को, हम ओन नहीं कर रहे हैं
जी।
तो जो ये अपना एक जो अपना हमारे में दरार पड़ चुकी है ना, वो खत्म होनी चाहिए। ये एक एक होना चाहिए ना, एक मुख्य बंद करना चाहिए ना, और मेरे साथ कामयाब है ऐसी कोई बात नहीं। और बड़ी अच्छी बात ये उन्होंने जो आप अभी आपसे बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट सिर्फ कहानी और म्यूजिक, मैं कहता हूँ ये दो चीजें, और कहानी आप बेमकसद ना लें, उसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर दें, कोई ना जरूर दें, एजुकेट करें आप ऑडियंस को, पब्लिक को। आप देखें ना आपका मुआशरा जो हमने ये कार्टून में हमने तबाह कर दिया, जो हिंदी में दबक हो रहा है, आपकी नई नस्ल जो है वो बिगड़ गई है। आप देखिए माता पिता जो है बच्चे कहने शुरू कर दिए, मैं एक शादी में गया तो बच्ची कह रही है कि हमारे फेरे कब हो गए, एक मर्ग में गया तो बेटा कह रहा है कि अच्छी कब जलाई जाएगी, ये हो गया है आपके माशरे में। गौर कीजिए, बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो रही है हमारे माशरे में।
अच्छा तो फिर
हम दूसरी तरफ कर रहे हैं, हम अपने माशरे को नहीं देख रहे हैं, हमारा माशरा बिगड़ कहा जा रहा है, ना हुकूमत इसका तोजह दे रही है ना हम लोग तोजह दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हम हुकूमत से मजबूर करें कि प्लीज आइए हमारे साथ कॉपरेट करें, कितनी देर तक हम अपने अकेले जंग लड़ते हैं, हम तो यकीन हो गए जंग लड़ रहे हैं।
बिल्कुल, और क्योंकि खासतौर पे
लीगल फिल्में खोल दी हमने सर ने
जी।
देखो ये क्या जुलम क्या है ये, आप हमने कम से कम ये देखिए हमारा अपना कल्चर है, पाकिस्तान क्यों बना था, क्यों नेचर फिल्म में बना था, तो अपना दादी आदमी ने मनाली की सूट किया महसूस की अपना कंबाइन बनाए रखते हैं फनकार की सराद नहीं होती। अरे सराद फनकार की तो होती है, फनकार की तो सराद होती है और गाँव आदमी की सराद कैसी होती है।
अच्छा
देखिए आप अपना कल्चर है अपना मुआशरा है अपना सारा अच्छा है।
जी शुक्रिया सैयद नूर साहब, मैं जो मशहूद ने बात की थी मैं वही बात आपसे पूछना चाहूँगी। मशहूद ने कहा कि कहानी बुनियादी चीज़ है और अच्छी कहानी अगर हो तो फिल्म कामयाब होगी, तो क्या इसमें क्या आप हमें मुझे बताइए आप कौन से एलिमेंट समझते हैं ज़रूरी हैं इस वक्त अच्छी फिल्म बनाने के लिए।
मैंने 300 फिल्में लिखी हैं अपनी जिंदगी और मैंने यही समझा है कि जिन्होंने अच्छी कहानी जो लिखी कभी कभी वो भी एग्जीक्यूशन डायरेक्टर के एग्जीक्यूशन से खराब हो जाती है। कहानी का पहला जो मसला है वो एक थॉट है और उस थॉट को स्क्रीन पे किस तरह आना है दैट इज टेक्निकल जॉब जिसको हम स्क्रीन पे बोलते हैं। फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो स्क्रीन पे होती है और कहानी तो बहुत मिल जाती है, नॉवल नगार बहुत कहानियां लिखते हैं, अफसाने बहुत होते हैं, लेकिन फिल्म में वो किस पेज के साथ आना है, किस अंदाज से आना है, उसमें क्या फिल्म होगी या नहीं होगी या कैसे उसको डिवाइड करना है दैट इज स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले जैसे डॉक्टर ने बोला है फिल्म की और ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं।
पहले उनसे जब कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती थी तो वो ऐसा लगता था कि आपका प्रोडक्ट जो है वो उसकी कोई जरूरत नहीं है, एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये कि जैसे आप कहीं पर भी हिंदुस्तान या ईरान की जब आप बात कर रही हैं वहां पे जब मूवी बनती है तो उसकी एक एक्नॉलेजमेंट होती है किसी भी एक छोटी कंपनी के साथ जो कि वहां पे उसको लेके चलते हैं। अब वो चाहे वो मार्केटिंग पीपल हो या फिर वो आपके जो है इंटरमीडिएटरी उनके इंस्टीट्यूशंस हो, हमारे पास वो चीज ही नहीं है। हम तो एक इंडी फिल्म वाले हैं, हम तो समझने के यकीन है, तो उसको किस तरह से हम लेके जाएं कि हमको पता चले कि वो मूवी थिएटर में चल जाएगी। एक मकसद तो ये है, जहाँ पर आपने कहा इदारों का उस पर मैं तहफ़ुज़ रखूंगा।
सैयद नूर साहब, ये एक जो आपने पहले बात की थी कि हमारा जो देखने वाला है फिल्म देखने वाला जो उम्र के लिहाज से जो तबका है वो अब कम उम्र के लोग हैं यानी नौजवानों का तबका है, तो क्या जो आपने बात की कि टेक्निक की, तो मेरे ख्याल है नौजवानों के लिहाज से मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करती हूँ कि चूँकि वो वेस्टर्न मूवीज़ देखते हैं और वो हॉलीवुड देखते हैं तो उन्हें पता है कि टेक्निकल चीज़ें क्या होती हैं, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा है, तो कौन से इकदाम ज़रूरी हैं जो किए जाएं। लेकिन मैं ये सवाल आप मेरा याद रखिएगा, गुलजमीन साहब काफ़ी देर से मुंतज़र हैं आपसे कुछ पूछने के, उनको मैं ले लेती हूँ। जी गुलजमीन साहब,
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम,
मैं गुलजमीन मोहम्मद एजेंसी से बोलो अल्ताफ भाई और सैयद नूर साहब को मैं वेलकम कहता हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
मशहूर साहब ने क्या कसूर किया है, एक मशहूर साहब भी हैं।
सब दोनों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं, क्योंकि सारा दारोमदार जो फिल्म इंडस्ट्री पर होता है और हमारा जो मुल्क है हमारा जो हुकूमत है तो उसको चाहे कि इंडस्ट्री को आगे ले जाए और इससे तमाम माशरे को बहुत अच्छी तासर मिलती है और इससे फिल्मों से काफ़ी तरबियत होती है, अच्छे अहलाक भी पेश की जाती है और जो इंसान ये खूब की खिलाफ वर्जी होती है तो भी मंजर आम पर आ जाती है, तो हुकूमत को चाहिए कि इसके साथ भरपूर तावन होना चाहिए। कबाइल जो यहाँ जिस हालात में आजकल गुजर रहे तो इस पर एक फिल्म बनना चाहिए, क्योंकि कबाइल के साथ आजकल बहुत ज्यादतियाँ हो रही है जो कुछ हालात है, तो इस पर एक फिल्म होना चाहिए और ये इंशाल्लाह ये फिल्म जो है तमाम पाकिस्तान में कामयाब होगा, पाकिस्तान नहीं के तमाम दुनिया में।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है कि सैयद नूर साहब आप अगर इसका जवाब दें गुलजमीन साहब के सवाल का। ये चाहते हैं कि कबाइली इलाकों की जो सूरत हाल है
बहुत मोहब्बत के साथ उन्होंने हमें एडमिट किया है
जी बिल्कुल
मशवरे दिए हैं। अच्छा मैं यहाँ अमजूद साहब को बताता चलू कि मैंने 5-6 साल एफर्ट किया और उस एफर्ट के बाद एमसीए डीएमयू और दरिया यूनिवर्सिटी जाना बहुत ही पढ़ा रहा हूँ, फिल्म पढ़ाई जा रही है
और इंस्टीट्यूशन में ये फिल्म आ गई है और अपनी भी अकेडमी काम कर रही है। तो अब वो जमाना नहीं रहा कि भी कोई इंस्टीट्यूशन में कुछ नहीं है। पाकिस्तान अब बहुत बदल गया है, बहुत तेजी से फिल्म और जो फाइन आर्ट की तरफ से जो इज्जत है वो बढ़ रही है, इज्जत मिल भी रही है। अब पेरेंट्स जो हैं ये बच्चों को इजाजत दे रहे हैं कि वो फिल्म में जाएं या फिल्म पढ़ें। और पहला जमाना जो आज के 20 साल 15 साल पहले की बात है, अगर कोई बच्चा कहता था कि मैं फिल्म में जाना चाहता हूँ तो बाप और माँ जी का उतार लेती थी। तो अभी वो इज्जत वो एहतराम मिल रहा है फिल्म को। इसके बाद यकीनन फिल्म जो है वो अच्छा काम करेगी और जैसे अच्छे चैनल बन रहे हैं फिल्म भी अच्छा बनेगी। यहाँ तक कराची की फिल्मों का सवाल जो अभी उन्होंने फरमाया, ये ड्रामा लगता है उसकी रीजन यही है कि वहाँ स्क्रीन प्ले नहीं है, वहाँ प्रैक्टिकल काम नहीं। तो जो ड्रामा है, जो टीवी का ड्रामा है, उसमें कोई स्क्रीन प्ले नहीं है। लंबे लंबे फिल्म जितना चाहे क्योंकि वो फिल्म देखने को मिलता है, वो औरत जाती है आधी हांडी पका के आ जाती है, चालन बना के आ जाती है और वो ड्रामा वही वही टीवी चल रहा होता है। तो फिल्म ये नहीं है, फिल्म एक स्पेस की चीज है, फिल्म एक फिल्म की चीज है। हर चीज वो फिल्म वो है जो आपको सेलबाउंड कर दे, जो आपको हिलने न दे, जो स्क्रीन के सामने आप आंख न कर दें, कहीं कोई चीज मिस ना हो दे। दैट इज फिल्म, फिल्म का किस्मा ये है। फिल्म अल्टीमेट मीडियम है और इसको ऐसी इसी अंदाज में बनना चाहिए कि जो अंधेरे इंसान फिल्म देखता है उसके साथ मिक करता रहता है, उसके साथ वो जब बाहर निकलता है तो उसके सीने के ऊपर उसके फिल्म के उसके दिमाग से उस फिल्म का असर होता है। तो कई दिन कुछ लोग कहते हैं तो फिल्म देखता था जब बचपन में, तो मेरे ऊपर कई दिन असर रहता था। मैं अगर कभी फिल्म देखता था तो मैं रो रो के मेरा बुरा हाल हो जाता था। आज वो ताकत आज अब फीलिंग फिल्म में नहीं रही, उसकी रीजन ये है कि हम बहुत कमर्शलाइज हो गए, बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी काम करने लग पड़े।
अच्छा, हमसे दो सवाल पूछे हैं। मुबशिर राहिर साहब ने तो खैर तारीफ की है और सराहा है, लेकिन अथर लाशारी पूछते हैं कि ये जो पाकिस्तान के बहुत से अदाकार इंडिया चले जाते हैं तो क्या यही तो वजह नहीं कि इस जो फिल्में नहीं बन रही? तो मेरा ख्याल है ज़ाहिर है ये वजह तो नहीं है, और लेकिन ये वजह ज़रूर है कि क्योंकि फिल्में कम बन रही हैं, अगर उनको यहाँ पर लोग काम मिले और वो कर सकें तो वो रहेंगे यहाँ पर।
आपकी ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये तो जबान होते हैं मोहब्बत, इनका ताल्लुक सरहदों से नहीं होता।
तो बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। बहुत सी चीज़ें तिश्ना रह गई हैं। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान सैयद नूर मशहूद कादरी और अल्ताफ हुसैन साहब थे, इन तीनों का शुक्रिया। और प्रोड्यूसर हमारी गुलरुख थी। शहनाज अजीज़ की जानिब से आप सबको खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।